ओम शांति। आप सभी का शांतिवन के विशाल प्रांगण में बेहद हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम सब के बीच में उपस्थित हैं आदरणीय संतोष दीदी जी। हम उनका भी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय संतोष दीदी जी का विशाल परिचय है, लेकिन आपको थोड़े सी शब्दों में दीदी का परिचय बताते हुए परम हर्ष हो रहा है कि आदरणीय दीदी जी 1965 में पिताश्री ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप से उन्होंने अपने जीवन को विश्वव्यापी सेवाओं के लिए और इस ईश्वरीय ज्ञान के अध्ययन मनन चिंतन के लिए तैयार कर लिया और अर्पित कर दिया। आदरणीय दीदी को हमारी दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, दादी ब्रजिंद्रा दादी जी का रूहानी स्नेह, प्यार, पालना और सानिध्य बहुत लंबे समय तक मिला। आप मुंबई की विशेष सेवाओं को संभालते हुए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों जोन की आप कुशल संचालिका हैं। आपको सेवाओं को देखते हुए मुंबई म्युनिसिपल बोर्ड ने आपको 20 गार्डन मुंबई शहर के भिन्न भिन्न स्थानों पर कुशल संचालित करने के लिए निर्देशन के लिए दिए हुए हैं। आदरणीय दीदी जी को बाबा की शिक्षाओं को सूक्ष्म में स्वयं पालन करना और हम सभी ब्रह्मावत्सों को उन्हें पालन कराकर हमारी जीवन को ऊंच बनाने का विशेष ध्येय रहता है। दीदी जी को डायरेक्ट अव्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बाप दादा जी ने चक्रवर्ती बनने का वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आप देश विदेश में चक्कर लगाकर बाबा का संदेश देते रहते हैं और लौकिक और हम अलौकिक भाई बहनों के जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचाते रहते हैं। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के सोशल विंग के समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय चेयरपर्सन हैं और साथ ही साथ इस बेहद यज्ञ की मैनेजिंग कमेटी के आप मेंबर भी हैं। और सबसे बड़ी बात जो बहुत हमारे मायने रखती है, हमारी दीदी जी इस विश्वव्यापी महायज्ञ की वर्तमान में शोभायमान मणि संयुक्त मुख्य प्रशासिका भी हैं। ऐसी महान हस्ती को हम यूं कहेंगे, आप संतुष्टता प्रसन्नता की धनी हैं और इस बेहद यज्ञ की कोहिनूर मणि हैं। ऐसी दीदी जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि वो हमें भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य हम सबको अपने गहन अनुभवों के मोतियों से हमारी अलौकिक झोली को भर दें। दीदी जी
ओम शांति। आज विशेष आप सभी यहां पर बाबा के महायज्ञ में स्वउन्नति के लिए समय निकाल करके खुद को भट्टी में तपाने के लिए आए। वैसे तो जिस दिन से जो भी ब्राह्मण बाबा का बना, उस दिन से लेकर के हरेक ब्राह्मण को सदैव यही लक्ष्य रहता है कि हमें स्वउन्नति करनी है, स्व का कल्याण करना है और अन्य आत्माओं का भी कल्याण करना है, क्योंकि हम सब कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं। इसीलिए प्रवृत्ति में रहते हुए भी विशेष अपनी स्वोन्नति की तरफ ध्यान देते हुए दिन प्रतिदिन हरेक कोई आगे बढ़ता जाता है। बाबा के सेवा स्थानों पर जाकर के पढ़ाई भी पढ़ते हैं, तपस्या भी करते हैं और सारा समय अपने ऊपर अटेंशन भी देते हैं, क्योंकि हम सभी गॉडली स्टूडेंट और हम ये जानते हैं कि हमें मनुष्य से देवता बनना है। इसकी डिग्री प्राप्त करने के लिए हमें पढ़ाई जरूर पढ़नी है। तो हरेक ब्रह्मा वत्सों का जितना बाबा के साथ प्यार है उतना ही बाबा की पढ़ाई के साथ भी जरूर प्यार हो। वैसे हरेक स्थान के ऊपर योग की भट्टियां भी हम करते रहते हैं, परंतु विशेष मधुबन में जो योग की भट्टी करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ के वातावरण का सहयोग और तपस्या भूमि का वातावरण, यहाँ की शक्ति, यहाँ के अनुभव ये अनोखे होते हैं। वैसे भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी मशीनरी अगर सदैव चलती रहती है तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसे स्पीड से चलाने के लिए बीच बीच में उसकी सफाई जरूर करनी पड़ती है, उसको आइलिंग भी करना पड़ता है। तो यहां भी हम लोगों के लिए बीच बीच में ये जो योग की भट्टियां होती है, ये समझो हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए एक युक्ति है। क्योंकि जब इतना बड़ा संगठन देखते हैं ब्राह्मणों का, तो संगठन देखने के बाद भी उमंग और उत्साह आता है, क्योंकि ये जो संगठन है ये आगे बढ़ाने वाला संगठन है। ये ब्राह्मणों का संगठन सुखदायी संगठन है, क्योंकि निस्वार्थ प्यार यहाँ पर, रूहानी प्यार मिलता है। और जब देखते हैं सिर्फ हम नहीं चल रहे इस मार्ग पर, परंतु हमारे जैसे अनेक अनेक चल रहे हैं, ये देख के और भी जोश आता है और स्पीड बढ़ती है। आज किसी भी बाबा के बच्चे से पूछेंगे कि कैसे है, तो यही कहेंगे कि हम चल रहे हैं, ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु हमें ये देखना है कि हम कौन सी गति से चल रहे हैं, क्योंकि चलने चलने में अंतर होता है। गति है, पर गति के साथ साथ प्रगति है, क्योंकि सिर्फ गति से भी फायदा नहीं होता है, गति के साथ प्रगति की भी बड़ी आवश्यकता होती। तो हम जो पहले दिन से बाबा के साथ योग लगाते हैं, तभी की हमारी स्थिति और अभी की स्थिति में क्या अंतर है? पहले जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, तभी की और अभी की पढ़ाई में क्या अंतर है, ये भी चेक करने की आवश्यकता होती है। तो उसी लक्ष्य को लेकर के, खास सब बातों से निवृत्त होकर के यहाँ आकर के योग की भट्टी में अपने को तपाते हैं, क्योंकि यहाँ जो एकांत मिलता है, स्व का दर्शन करने के लिए, स्व की चेकिंग करने के लिए हमें बहुत टाइम मिलता, दूसरी तो कोई प्रवृत्ति होती नहीं। तो इसीलिए आप लोगों को जो भी 3 या 4 दिन मिले हुए हैं, उसमें हरेक को यही लक्ष्य रखना है कि हमें स्व परिवर्तन करके बाप समान बनना है, बाप की आज्ञाओं पर चलते हुए संपूर्ण और संपन्न बन के बताना। बाबा ने हम बच्चों की सर्व आशाएं पूरी की हैं, अभी समय है हमें बाबा की सर्व आशाएं पूर्ण करनी है, क्योंकि ये एक ही संगम युग ऐसा है सारे कल्प में, जिस समय हम बच्चों को बाबा से डायरेक्ट ईश्वरीय परवरिश मिलती है और उस परवरिश का रिटर्न भी हम इस संगम युग पर ही कर सकते हैं। फिर तो कभी बाबा मिलता ही नहीं है जो हम उसका रिटर्न करें। तो बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान बने, गद्दी नशीन बने, बाप का नाम बालक। हम देखते हैं कि लक्ष्य तो सबको यही रहता है, परंतु चलते चलते कभी कभी गति ढीली पड़ जाती है। इसका कारण क्या होता है? वास्तव में देखा जावे तो दिन प्रतिदिन हमारी स्पीड हमारी गति बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम लक्ष्य के नजदीक जा रहे हैं। तो जब लक्ष्य हमको सामने दिखाई पड़ता है तो हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए, परंतु कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण किन किन पुरुषार्थियों की स्पीड ढीली होती। अपना अनुभव सुनाते हैं। हम जब शुरू शुरू में आए कहते हैं, उस समय हमारा जो उमंग था, उत्साह था, आगे बढ़ने की लगन थी, उससे अभी थोड़ी सी कम हो गई। वास्तव में देखा जावे तो थोड़ी सी कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बाबा कहते, बच्चे अब तुम वहां पर आके पहुंचे हो, नई दुनिया तुम्हारे सामने है। सिंधी में इसको कहते षडपंद पर। षडपंद माना आप आवाज दो और सामने वाले सुने, उसका रिस्पांस करें। तो आप आवाज दो और देवताएं आपको रिस्पांस करें, इतना नजदीक आप लोग आके पहुंचे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारी चढ़ती कला नहीं परंतु उड़ती कला। अभी उड़ के तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, परंतु हम देखते हैं कि जिनकी स्पीड ढीली हो जाती है उसका कारण क्या? वो स्पीड बढ़ाने के लिए खासी भटियां करते। स्पीड ढीली होने के तीन कारण। एक पहला कारण है लीकेज, दूसरा कारण है रायल अलबेलापन, और तीसरा कारण है आलस। बाबा के द्वारा हम बुद्धि का योग लगा करके बाबा से सर्व शक्तियां लेते हैं, सर्व ईश्वरीय प्राप्तियां करते हैं, परंतु अगर हमारा खुद की तरफ अटेंशन नहीं होता है तो एक तरफ हम शक्ति भरते हैं और दूसरी तरफ अगर जैसा हम देखते हैं कि पानी की टाकी है, उसमें ऊपर से तो नल चालू है, पानी भर रहा है, पर नीचे अगर उसको छोटा सा भी छेद है तो टाकी खाली की खाली रह जाती। तो उसी प्रकार अगर बुद्धि में कहां ना कहां छेद है तो वो शक्तियां वो प्राप्तियां जो है वो लीक हो जाती। इसीलिए बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे जो भी तुम्हें बाबा से प्राप्तियां होती है उन प्राप्तियों को यूज करो। किस में यूज करो? स्व उन्नति में और विश्व कल्याण में यूज करो। अगर उनको यूज नहीं करेंगे तो लूज हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। वैसे भी आप देखो कोई भी चीज होती है उसकी लिमिट होती है। आप घर में ला करके उस चीज को रखो, मशीनरी को रखो, या कोई दूर बात दूसरी बात छोड़ो, घर में आप माताएं टमाटर ला के रखती हैं, आप उसको यूज नहीं करेंगे तो आप ही खराब हो जाता है। कोई भी सब्जी रखेंगे तो आप ही खराब हो जाते। तो उसी प्रकार बाबा के द्वारा जो हमें प्राप्तियां होती है, अगर हम उसे स्वउन्नति में नहीं लगाते हैं, विश्व कल्याण में नहीं लगाते हैं, तो वो नष्ट हो जाता। तो इसीलिए शक्तियों को बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल करना हमें सीखना है। जितना जितना हम इस्तेमाल करते हैं खुद के प्रति या विश्व कल्याण के प्रति, वो उतनी उतनी बढ़ती है। परंतु कारण क्या होता है, स्व उन्नति के लिए हमें जितना समय देना चाहिए, स्व उन्नति के लिए हमें जो शक्तियां लगानी चाहिए वो उसमें न लगा करके कोई भी परिस्थिति आती है तो परिस्थिति में फंस करके अपनी शक्तियां और अपना समय उसमें वेस्ट कर देते। अभी दो बातें हैं, एक है स्वस्थिति और दूसरी है परिस्थिति। स्वस्थिति जो है वो अंदर से आती है, परिस्थिति बाहर से आती है। आप देखो दोनों का रास्ता ही अलग है। जब दोनों का आने का रास्ता है तो आपस में भिड़ नहीं सकते हैं, वो अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं। परंतु हम क्या करते हैं, अपनी शक्तियां और अपना समय जो है वो परिस्थितियों में लगा देने के कारण स्व उन्नति जो है हमारी वहीं रुक जाती। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें पहले स्व उन्नति करनी है और स्व उन्नति के साथ साथ हमें विश्व की उन्नति करनी। इसीलिए हमें जो भी प्राप्तियां होती है उसको हम रोज के जीवन में प्रयोग करना सीख लेवे, उसको इस्तेमाल करना सीख लेवे, ताकि वो शक्तियां वो प्राप्तियां नष्ट नहीं हो जावे, खलास नहीं हो जावे। और ये ऐसा खजाना है बाबा के द्वारा मिला हुआ, आप जितना जितना इसको यूज करेंगे उतना उतना ये बढ़ने वाला है। आप जितना जितना बांटेंगे उतना उतना बढ़ने वाला है, अगर आप उसको बांटेंगे नहीं तो बढ़ने वाला नहीं। आप जब तक नहीं बांटते तभी तक उन्नति नहीं होती। ये बड़ा विचित्र विद्यालय है, इसमें हमें पढ़ना भी है और साथ साथ में पढ़ाना भी है। हमारा ये जो सेवा का सब्जेक्ट है ये इसीलिए, हम समझते हम औरों के कल्याण करने के लिए सेवा करते, नहीं, वास्तव में हम खुद के कल्याण के लिए ही सेवा करते हैं। क्योंकि जिस समय बैठ करके हम औरों को समझाते हैं, अच्छा औरों को हमने लेसन दिया तुम्हें क्रोध नहीं करना है, तो नेचुरली हमें खुद के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। खुद के ऊपर हमारा पाबंदी आ जाएगी कि मुझे क्रोध नहीं करना, क्यों, मैं तो दूसरों को सिखा रही। औरों को कहेंगे आत्माभिमानी बनो तो जरूर मुझे आत्माभिमानी बनना पड़ेगा। तो बाबा ने ये युक्ति की हुई है सेवा की कि आप जितना दूसरों को देते जाएंगे उतना खुद के अंदर भरते जाएंगे। कहते हैं ना, कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। तो जब आप औरों का भला करना सीख जाते हैं तो खुद का भला अर्थात कल्याण जरूर होता। तो इसीलिए हमें हमेशा स्व उन्नति की तरफ ध्यान देते हुए, विश्व कल्याण का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि बाबा ने हमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है इस सारे विश्व को परिवर्तन करने की। आज भी बाबा का सुना ना कि तुम बच्चों को इस समय पर कौन सा तख्त मिला है, तुम्हें अपना स्वमान का तो तख्त मिला ही, परंतु सेवा का तुम्हें छत्र मिला हुआ है। तो ये जो छत्र है सेवा का, राजा तो छत्र के बगैर नहीं बैठता है, मुकुट के बगैर नहीं बैठता। तो हमारे को अगर रत्न जड़ी छत्र पहनना है तो उसके लिए हमें अनेक आत्माओं को बाप समान बनाने की जरूरत है। तो इसलिए अपनी शक्ति को यूज करके और शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। जितना यूज करेंगे उतना बढ़ती जाएगी, और अगर चलते चलते हमारी स्पीड कम हो जाती है तो हमें देखना है कि कहाँ लीकेज कहाँ पर है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, देहधारियों के साथ अगर हमारा लगाव है, अगर उनकी याद है हमें, तो हमारी शक्तियां नष्ट होती। शक्तियां खलास होने का कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प जो है वो शक्ति को नष्ट करते हैं, समय को नष्ट करते हैं, श्वासों को नष्ट करते हैं। पहले शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई उस समय बाबा ने बताया था कि बच्चे अगर संकल्प में कुछ आता है तो कोई हर्जा नहीं है, वाणी और कर्म से कभी विक्रम नहीं होना चाहिए। अभी वो समय नहीं, अभी बाबा ये नहीं कहते संकल्प में कुछ भी चलेगा तो आएगा, नहीं तुम जैसा संकल्प करेगे वैसा वातावरण बनेगा, तुम जैसा संकल्प करेगे वैसा तुम बन जाएगे। तो हम लोगों ने देखा शुरू से लेके मम्मा ने इस बात के ऊपर बहुत ध्यान दिया, भले बाबा कहते थे संकल्प चलेगा तो हर्जा नहीं है, परंतु मम्मा कहती थी आप लोग सावधान रहना, आज आप छोटे छोटे बच्चे होने के कारण बाबा छूट देता है, आगे चल के देखना यही बाबा आपको कहेगा कि आप संकल्प भी व्यर्थ नहीं चला सकते। और मम्मा ने पहले दिन से संकल्पों के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा, इसीलिए हम देखते हैं कि मम्मा बाबा नंबर वन है तो मम्मा प्लस वन में आ गई। पहले राधा पीछे कृष्ण आया, इसका कारण क्या है? क्योंकि उसने अपने ऊपर पूरा ही कंट्रोल रखा। तो व्यर्थ संकल्प जो है वो हमारी शक्ति को नष्ट करते हैं, हमारे समय को बर्बाद करते हैं, हमें कमजोर बना देते हैं। और जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो उसकी स्पीड नेचुरल है ढीली हो जाती। तो जैसा स्थूल रीति से अगर शरीर कमजोर होगा तो स्पीड ढीली हो जाती है, वैसा ही आत्मा कमजोर होगी तो उसकी स्पीड ईश्वरीय मार्ग पर चलने में ढीली हो जाती। तो इसीलिए एक तो हमें ये परहेज करने की आवश्यकता है कि हमें कुछ भी हो जावे व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने हैं। व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने हैं तो उसके लिए क्या करना है? समर संकल्प करो। समर संकल्प के लिए हम बाबा की जो भी मुरली सुनते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं देखो बाबा के महावाक्य सुनने कितना अच्छा लगता है, परंतु सुन के अगर इधर ही छोड़ देते हैं तो उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती है। आप जो सुनते हो उसका मंथन करो। तो जितना जितना हम मंथन करते हैं उतनी उतनी हमारे अंदर शक्ति आती जाती है, उतने उतने समर संकल्प करने की हमारे अंदर ताकत आती है। और जो समर संकल्प कर सकता है वो ही निरसंकल्प रह सकता। हमारा लास्ट पेपर तो यही ना, हमें निरसंकल्प होकर के एक ही बाबा को याद करना। तो उसके लिए हमें थोड़ा पढ़ाई की तरफ अटेंशन देने की आवश्यकता है, क्योंकि अध्ययन मनन चिंतन और पीछे मगन। तो जितना जितना हम आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, उतना उतना हमारा मनन चिंतन चलता है और उसके ऊपर हमारी स्थिति बनती है। तो इस बात का अगर हम ध्यान दे करके चलते हैं तो मैं समझती हूँ ये जो लीकेज होता है ये लीकेज बंद हो जाएगा और हम आत्माएं शक्तिशाली होकर के उड़ना चालू कर देंगे। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को सिर्फ दो पंख नहीं दिए, चार पंख दिए। वैसे आप देखेंगे तो जो भी पंछी होते हैं उनको दो ही पंख होते हैं, परंतु बाबा ने हमें ज्ञान और योग के पंख दिए और उसके साथ साथ हमें उमंग और उत्साह के भी पंख दिए। तो हम तो चार पंखों से उड़ते हैं, इसीलिए हमारी स्पीड तो कितनी होनी चाहिए। हमारा उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं होवे, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, हमारी प्रगति हमेशा ही होती रहे, कभी भी हमारी प्रगति रुके नहीं, इस बात का ध्यान देने की बहुत बहुत आवश्यकता। तो हमारी स्पीड जो है वो क्या है, सदैव बढ़ती जाएगी, कमती नहीं होगी। अभी दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी बात है रॉयल अलबेलापन। हम सब यात्रा पर हैं, हम जा रहे हैं, हम सभी के आगे लक्ष्य है कि हम सभी को कर्मातीत बनना है, हम सभी को संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है। बाबा कहता है ये ह्यूमन रेस, जैसे घोड़ों की रेस होती है ना, वैसा ये मनुष्यों की रेस चल रही है, तुम दौड़ रहे। जिस समय पर रेस होती है, रेस में हमेशा क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चों की रेस लगाते हैं, सभी का जो भी रेस में दौड़ने वाले हैं उनका जो ध्यान होता है सामने लक्ष्य की तरफ होता है, मुझे वहां पहुंचना। अगर दौड़ते दौड़ते उसने इधर देखा उधर देखा आगे देखा पीछे देखा गिर जाएगा, पहुंचने की बात तो दूर रहते। तो उसी प्रकार जब भी हम दौड़ रहे हैं, रेस में हैं, अपने लक्ष्य तक हमें पहुंचना है, तो हमें अलबेला बन के इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं। नहीं तो क्या करते हैं, चलते चलते देखेंगे कोई हमारे आगे है तो समझेंगे ये इतने समय से चल रहा है इसीलिए मेरे आगे है, ठीक है। मैं जिस स्पीड से चल रहा हूँ वही स्पीड मेरी ठीक है। किसी में देखेंगे तो बहुत समय से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, समझेगा अरे मैं इससे बहुत अच्छा हो गया, मेरे में तो बहुत परिवर्तन आ गया है, तो और ही ढीले हो जाएंगे। परिवर्तन आ गया तो आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, सी फादर फॉलो फादर। कभी भी किसी व्यक्तियों को तुमको देखना नहीं है, तुम्हें हमेशा देखना है तो एक ही बाप को देखना है, फॉलो करना है तो एक ही बाप को फॉलो करना। तुम ब्रह्मा बाप को फॉलो करते जाओ और उसको तुम देखते जाओ। देखो ऐसा कोई स्कूल या कॉलेज नहीं होता है जहाँ पर टीचर कहेगा तुम कॉपी करके पेपर लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं होता। पर ये हमारा एक ही ऐसा विचित्र विद्यालय है जहाँ बाबा कहता है कि तुम्हारे को ब्रह्मा बाप की कार्बन कॉपी बननी, कार्बन भी नहीं अभी तो कहता है फोटोस्टेट कॉपी बनो, क्योंकि एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इतना बाबा छूट देता है हमारे को। तो हमारा काम है हमेशा ब्रह्मा बाप को फॉलो करते जाना, ब्रह्मा बाप को देखना और किसी भी पुरुषार्थी को नहीं देखना, क्योंकि बाबा कहता है कोई भी संपूर्ण नहीं बनाए। तो इसीलिए आपको उनको नहीं देखना है, आपको सदैव मम्मा बाबा को सामने रख करके और आगे बढ़ते रहो। तो ये जो रायल अलबेलापन है, ये रायल अलबेलापन आधी नींद, आज देखो कोई सोया हुआ होता है उसको जगाना बहुत इजी होता है, परंतु जो ढोंग करके सो जाता है उसको कोई नहीं जगा सकता। जागता होगा आप उसको हिलाते रहेंगे चिल्लाते रहेंगे, वो हिलेगा ही नहीं सुनेगा ही नहीं। तो दूसरा कहता है अरे ये जाग रहा है ऐसा ही ढोंग करता है। तो ये अलबेलापन वो चीज है, आधी नींद, अज्ञान की नींद से तो उठे परंतु पूरे नहीं उठे, इसीलिए क्या है ना जागते हैं ना सोते हैं ऐसी बात। तो हमेशा हमारे को जागृत अवस्था में रहना है, हमें कभी भी अलबेला बन के नहीं चलना है, क्योंकि हम बहुत ऊंची चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। जब भी चढ़ाई के ऊपर चढ़ा जाता है तभी कितना अलर्ट होते हैं। अगर समझो अलबेले हो गए, कोई झुटका खाएगा, कोई इधर देखेगा कोई उधर देखेगा, गिर जाएगा ऊपर से। कहते हैं ना चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर, पैर फिसला तो गए काम से। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से ये ईश्वरीय चढ़ाई जो है उस पर चढ़ना है, अब संभाल संभाल के चलना है। ये रास्ता है बड़ा सरल परंतु ये खिसकने वाला रास्ता है, क्योंकि माया इसको इतना मुलायम करके रखती है, हम समझते हम जल्दी पहुंच जाएंगे परंतु बीच में पैर फिसलते। तो हमारा पैर नहीं फिसले, बुद्धि रूपी पैर हमारा नहीं फिसले, हम सदैव आगे बढ़ते रहे, इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये जो रायल अलबेलापन है, औरों को देखने का, परिस्थितियों को देखने का, बहुत परिस्थितियां आती है, बाबा कहता है ये सब साइड सीन, साइड सीन देख करके मनोरंजन करके चलो, साइड सीन देखने के लिए खड़े नहीं हो जाओ। स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, किन किन को साइड सीन बड़े अच्छे लगते हैं, खड़े होकर देखते रहेंगे साइड सीन, स्कूल उधर ही पूरी हो जाएगी। तो ये भी सहज जो भी परिस्थिति आती है, खड़ा होकर के कभी भी उसको देखो नहीं। अगर खड़ा होकर देखेंगे ना खुद ही घबरा, अरे इतना बड़ी परिस्थिति आ गई, इतनी बात हो गई, नहीं इसको साइड सीन समझो। आज देखो आप कहाँ भी जाते हैं ट्रैवल पर, अभी इधर ही मधुबन में आए तो कौन सी सीट आपको अच्छी लगती? हरेक को यही चाहता है हमारे को विंडो सीट मिलनी चाहिए, किसके लिए? साइड सीन देखने के लिए। साइड सीन देखने से मनोरंजन होता है, तो इसीलिए बाबा कहता है ये परिस्थितियां सब साइड सीन है, इससे अपना मनोरंजन करो, इसमें मूंझते क्यों है। साइड सीन कभी भी खड़ी नहीं रहती है, वो चलती रहती है चलती रहती है। तो जो भी आया है वो चला जाएगा, वो ठहरने वाला नहीं है, इसीलिए आप उसको देख के अपनी स्पीड को कभी भी ढीला मत करो, आप आगे बढ़ने का काम करते रहो। और तीसरा जो है आलस। आलस ये बहुत बड़ा विकार है, छठा विकार। जैसे पांच विकार है ना, पांच विकार तो सबको मालूम होते हैं, ये जो छठा विकार आलस होता है, इसको बहुत लोग आलस को विकार नहीं समझते, इसको छोड़ देते हैं। जैसा बिच्छू होता है ना, बिच्छू काटता है, डंक मारता है, पर उससे भी उसके जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको टिंडर कहते हैं, वो उससे भी खतरनाक होते हैं, तुम्हारे कान में चले जाएंगे, नाक में चले जाएंगे, बहुत हैरान करते हो। तो ये भी समझो, ये विकारों के बाल बच्चे ऐसे हैं, ये ज्यादा हैरान करने वाले। तो ये आलस आता कहाँ है? आलस कभी थिएटर में नहीं जाएगा, वो सत्संग में आता है, उसको सत्संग अच्छा लगता है। इसीलिए कहते हैं ये जो आलस या नींद है, ये कहाँ पर आती है? ये सत्संग में आती है, इसको कुंभकर्ण की युगल कहते हैं। कुंभकर्ण घर में सोया पड़ा रहता है, अपनी युगल को सत्संग में भेज देता है। क्लास सुनते 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 कहाँ चले जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है। शांति में बैठे बैठे परम शांति आ जाती है, पता ही नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आलस का त्याग करना ये भी बहुत आवश्यक। बाबा कहते थे, साकार बाबा, बाबा कहते क्योंकि बाबा को कभी कोई उबासी देता था क्लास में, या कोई झुटका मारता था, कभी भी अच्छा नहीं लगता। बाबा कहता था, देखो दुकानदार होता है, अगर वो झुटका मार रहा है तो ग्राहक आके उसका टप्पर ही सारा उठा के ले जाएगा। टप्पर समझते, सारा सामान ही ले जाएगा, उसको पता ही नहीं पड़ेगा, देवाला निकल जाएगा उसको। तो इसीलिए माया क्या करती, टप्पर ही उठा लेती है। तो बहुत अलर्ट होकर के बैठो, सुस्त होकर के नहीं बैठो। सुस्ती जो है वो आत्मा का बहुत बड़ा दुश्मन, और ये आती किस समय पर है सुस्ती, ये बहानेबाजी सिखाती है। ये अमृत वेले खास आएगी, जब भी उठने का समय होगा ना, उसी समय पेट में दर्द होगा, कभी तो सिर में दर्द होगा, कोई ना कोई कारण बनेगा, कोई ना कोई बहाना बनेगा, और फिर क्या हो जाएगा, उस समय को मिस कर डाले। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी झोली भरने के लिए आता हूँ, परंतु बच्चे उस समय क्या करते हैं, सुस्ती करते हैं, और सुस्ती के कारण फिर क्या होता है, जो कमाई करनी होती है वो कमाई का समय निकल जाता है। फिर फायदा क्या है, अगर कमाई का समय निकल गया हमारा, तो हमें मिलता तो कुछ भी नहीं है, खाली हो जाते हैं फिर, क्योंकि सारे दिन की दिनचर्या का मदार सवेरे के ऊपर है। जिनका सवेरे का समय, अमृत वेला जिनका ठीक है, तो सारा दिन ठीक चलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे आंख खुलते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करो। जिसकी मॉर्निंग गुड है, उसका आफ्टरनून भी गुड होगा, उसका इवनिंग भी गुड होगा, उसका नाइट भी गुड होगा। परंतु अगर मॉर्निंग ही ठीक नहीं होगी तो फिर क्या होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमारे भारत में खास मानते हैं ना इस बात को, अगर किसी का दिन खराब जाता है ना, तो कहते पता नहीं आज किसका मुंह देखा मैंने। जैसे व्यक्ति का मुंह देखते हैं वैसा कहते दिन जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम्हें किन व्यक्तियों का मुंह नहीं देखना है, तुम्हें बाबा को देखना है, बिगर मुंह वाले का मुंह देखना है। तो इसीलिए उठते ही बाबा से अगर तुम गुड मॉर्निंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा सारा गुड ही गुड हो जाएगा। और फिर सारा दिन तुम अपने ऊपर ध्यान रखो, ऐसा नहीं सवेरे तुमने बाबा को याद कर लिया, और सारा दिन अगर याद की लिंक बनी हुई नहीं होगी, तो अमृत वेला आपका कभी भी पावरफुल नहीं हो सकता। अगर सारा दिन हमारी याद की लिंक बनी रहती है, तो अमृत वेला भी पावरफुल होता है। इसीलिए कहा जाता है अंत मति सो गति। तो बाबा कहते हैं, रात को सोने के पहले आप अपनी सारी दिनचर्या आंखों के सामने लाओ, क्योंकि वो दिनचर्या का अंत है। तो अंत के समय सारी दिनचर्या अपनी सामने लाओ, कि हमने कितना समय बाबा को याद किया। हमने पाप तो नहीं किया कुछ भी, क्योंकि बाबा ने हमें कर्मों की गहन गति समझाई है। पाप नहीं किया, पर सारे दिन में मैंने पुण्य कितना किया, पुराने पापों को कितना दग्ध किया। अपना चार्ट देख करके फिर बाबा से गुड नाइट करके सो जाओ तो आप ही आप सवेरे आपकी आंख खुलेगी और आप बाबा से गुड मॉर्निंग कर सकेंगे। फिनिश करके उसको कंटिन्यू नहीं करो। अगर आज की बात कल से ऐसा नहीं तो चलता, लिंक चलती रहती है ना, किसी बात को पकड़ करके चलते रहेंगे तो चलते रहे नहीं। बाबा कहते हैं उसको फिनिश कर डालो, खलास कर डालो, उस बात को भूल जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो ऐसा करके हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समय कम है और हमारे को तीव्र गति से आगे बढ़ने का है। सिर्फ बढ़ना नहीं है परंतु पहुंचना है हमें। तो जब हमें पहुंचना है, समय के पहले पहुंचना है। समय पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, परंतु हमें समय के पहले पहुंचना है, अपनी उस ऊंची अवस्था को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें अपनी स्पीड बढ़ाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। और स्पीड बढ़ाने के लिए हमें खुद के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जितना ध्यान देते जाएंगे हम अपने ऊपर, उतनी उतनी हमारी लगन बढ़ती जाएगी। जितनी लगन बढ़ेगी उतनी क्या होती जाएगी, लगन बढ़ने से हमारा जो पापों का बोझ है वो दग्ध होता जाएगा बाबा की याद के द्वारा। तो हम हल्के हो जाएंगे, हल्के होने से सहज ही उठ सकेंगे। आज किसी को वजन दे के चलना कहो, दौड़ने के लिए कहो, तो बहुत भारी पड़ता है, परंतु अगर वजन रख देवे तो उससे क्या हो जाएगा, सहज ही पहुंच जाते हैं। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये युक्ति बताई है कि बच्चे सबसे अच्छा तरीका है हल्का होने का, जो मेरा है वो तेरा कर डालो। कभी भी मेरा मेरा नहीं करो, क्योंकि माया को आने के दो ही दरवाजे हैं, एक है मैं और दूसरा है मेरा। ये दो बातों को अगर परिवर्तन कर देते हैं, जब मैं आता है बुद्धि में तो ये पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा ने आज कहा ना, खुद को ही नहीं पहचानते, खुद की पोजीशन में नहीं रह सकते। दूसरे को तो छोड़ो, पर खुद की पोजीशन में नहीं रह सकते। मेरे को किसने पसंद किया है, कौन मुझे मिला है, वो ही भूल जाते। तो जब ये बुद्धि में रहता है कि मैं कौन हूँ और मेरा जो है वो एक ही बाबा है, तो ये सब कुछ क्या है, उसका है। जब बाबा को सब बोझ दे देते हैं तो एकदम हल्के हो जाते हैं। हल्के होने से हम उड़ सकते हैं, हल्के होने से हम पहुंच सकते हैं अपनी मंजिल तक, परंतु भारी होकर के चलते हैं तो नहीं पहुंच सकते। और फिर क्या कहेंगे, हम खुद बाबा को देते नहीं अपना बोझ, और फिर कहते बाबा हमको मदद नहीं करता है। बाबा मदद करता है सबको, परंतु मदद लेने वाले चाहिए। मदद देने वाला दे रहा है, परंतु लेने वाले नहीं लेते तो क्या करेगा, ये तो बता। कहते हैं ना, देंदा दे लेंदा तक पाए। देने वाला देता है पर लेने वाले ही थक जाते हैं, वो ही टायर हो जाते हैं ले लेके, क्योंकि बहुत देता है ना, तो ले लेके टायर हो जाते हैं। परंतु बाबा कहता है नहीं, तुम बाबा जो तुमको देता है वो तुम लियो बाबा से, और तुम्हारा जो बोझ है वो बाबा को दे दो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार हो? कोई बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं, बोझ देने के लिए सब तैयार है, परंतु एक ही बाबा है जो हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार है, परंतु बच्चे देने के लिए तैयार नहीं। भक्ति मार्ग में हमने यही तो ठगियां की नहीं, जब जाते थे मंदिर में तो क्या कहते थे, ये भगवान जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, और घर में आएंगे तो तेरा है, सो भी मेरा है। तो यहाँ भी अगर ऐसा ही करके चले गए हम, अगर बोझ खुद ही उठा के चले गए तो क्या होगा। तभी बाबा कहता है कि बच्चे अपने को कभी भी गृहस्थी नहीं समझना। गृहस्थी समझना माना बोझ वाला हुआ, अपने को ट्रस्टी समझो। और बाबा ने ये खास बताया प्रवृत्ति वालों को कि प्रवृत्ति में रहते हुए ये बुद्धि में रखो कि हमको बाबा ने यहाँ सेवा के लिए सेवा स्थान दिया हुआ। जैसा बाबा ने कहा कि इन बच्चियों को मैंने सेवा स्थान पर रखा है, वैसा आप बच्चों को भी सेवा स्थान पर रखा हुआ है। कभी भी ये नहीं समझो कि ये घर मेरा है, ये बाबा का घर है, और हम बाबा ने मुझे सेवा के लिए निमित्त बनाया है। अगर ये स्मृति रहेगी तो चैरिटी बिगिन्स एट होम कर सकेगी। घर वालों का वही उद्धार कर सकते हैं जिनकी बुद्धि उनसे टूटी हुई होगी। बाबा ने हम बच्चों को युक्ति बताई हुई है, तुम बच्चों को प्रवृत्ति में रहते हुए, घर ग्रस्त में रहते हुए तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना है माना बुद्धि का योग तोड़ करके पीछे निभाना है। परंतु क्या करते हैं, आधा अक्षर खा जाते हैं, तोड़ भूल जाते हैं और निभाना याद रहता है, तो निभाते निभाते खुद ही निभ जाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ निभाना ही ये बुद्धि में नहीं रखो, परंतु हमें बुद्धि का योग तोड़ के और उसके साथ जोड़ करके पीछे निभाना है, क्योंकि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। जो भी हमारे लौकिक संबंधी है उनका कल्याण कैसा होगा। कभी कभी कोई आके साकार बाबा को बोलते, बाबा मेरे पति का बुद्धि का ताला खोलो ना, मेरी सास के बुद्धि का ताला खोलो ना। भाई लोग तो मुश्किल कहते हैं हमारी युगलों का ताला खोलो, वो समझते आवे नहीं तो नहीं आवे क्या होता है। परंतु माताएं जो है ना वो छोड़ती नहीं, वो पीछे पड़ी रहती है, वो समझते ये आएंगे तो इनका भी कल्याण होगा, हमारे को भी मदद मिलेगी। तो बाबा बोलता था कि देखो तुम बोलते हो कि फलाने का मेरे सास के बुद्धि का ताला खोलो, पति के बुद्धि का ताला खोलो, परंतु बाबा ने तुम्हें विश्व कल्याणकारी बनाया हुआ। तो जब तुम विश्व कल्याणकारी है तो विश्व के अंदर ये भी तो आ गए ना, तुम्हारा पति या तुम्हारी सास कहाँ रहती है, विश्व में ही रहती है ना। तो तुम सारे विश्व का कल्याण करने का क्यों नहीं सोचते हो, सिर्फ उनका ही कल्याण क्यों सोचते हो, ये भी तो स्वार्थ हो गया ना तुम्हारा। तो सदैव ये बुद्धि में रखो कि हमें सबका कल्याण करना है, पर कल्याण वो ही कर सकता है जो न्यारा रहता है, वो ही कल्याण कर सकता है। अगर हमारी अटैचमेंट उनके साथ है, अगर हम उनको अपना समझ करके पीछे उनका कल्याण करना चाहते हैं तो कल्याण नहीं कर सकते। अगर ये बुद्धि में रखते हैं कि ये बाबा के हैं, हम भी बाबा के हैं, तो ही हम उनको सही रास्ता बता सकते हैं। तो बाबा ने जो जो युक्तियां हमारे को बताई है, जो ज्ञान बाबा हम बच्चों को देता है, उसको घड़ी घड़ी अंदर में रिवाइज करने की आवश्यकता। जितना जितना आप रिवाइज करेंगे अंदर में, जितना जितना उसको वापस दोहराते रहेंगे, तो रिवाइज करने से रियलाइजेशन करने की शक्ति आती। परंतु अगर रिवाइज नहीं करते हैं ना, तो हमारे अंदर महसूसता शक्ति पैदा ही नहीं होती है। महसूसता शक्ति पैदा नहीं होती है तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कि हम कहाँ पर। फिर कोई भी परिस्थिति आती है तो उससे क्या हो जाते हैं, शक्तिहीन होने के कारण घबरा जाते। परंतु पहले से ही अगर हम अपने में शक्ति भर लेते हैं, पूछेंगे आप कैसे कहते, वैसे तो हम ठीक है, परंतु कोई परिस्थिति आती है ना तो बहुत तकलीफ होती। अरे ये ज्ञान उसी के लिए, बाबा किस क्यों हमारे को ज्ञान देता है, परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है। परंतु मुकाबला करने के लिए बाबा ने जो अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं, साधन दिए हुए, उनको यूज करना हमें सीखना चाहिए। आज देखो कितना भी होशियार सोल्जर होवे, शक्तिशाली सोल्जर होवे, परंतु अगर उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र है, उसको यूज करना नहीं आता है, तो कुछ भी फायदा नहीं, उसकी हार हो जाएगी, जीत नहीं होगी। तो वैसा ही हमारे को बाबा जो ज्ञान देता है, ये ज्ञान शस्त्र भी है माया के साथ लड़ने के लिए। तो इसको यूज करो, जितना जितना यूज करेंगे उतना उतना हमारी जीत जरूर होती रहेगी। तो जिससे क्या हो जाएगा, हम आत्माएं शक्तिशाली रहेगी, क्योंकि हार खाते खाते वो संस्कार बन जाते हार। तो हार वाले संस्कार नहीं बनने हैं, विजय वाले संस्कार बनने हैं, क्योंकि हमने जिस दिन बाबा के पास जन्म लिया उसी दिन सर्व बच्चों को बाबा ने तिलक लगाया, विजयी भव, तुम मेरे विजयी बच्चे। तो अपनी अगर ये स्मृति रहती ना, स्मृति से समृद्धि आती है। आप जितनी जितनी ये स्मृति रखेंगे ना, मैं बाबा का विजयी रतन हूँ, तो मैं बाबा का विजयी रतन हूँ, तो मेरी कभी भी हार नहीं हो सकती है, हमारी सदैव जीत ही होगी। क्योंकि विजय याद आएगी तो विजय प्राप्त कराने वाला भी साथ में जरूर याद रहेगा ना, बाबा की याद भी बनी रहेगी। तो इसीलिए बाबा यही हमें शिक्षा देता है, बच्चे तुम संसार में रहो पर संसार तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए। संसार में भले रहो, संसार छोड़ने के लिए नहीं वो कहता है, परंतु संसार को इधर नहीं बिठा के रखो, अंदर में बिठा के नहीं रखो, सारा समय वो ही बातें बुद्धि में रहे। दुनिया की बातें तुम्हारे बुद्धि में रहे वो नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान भरपूर होगा तो क्या हो जाएगा, फालतू संकल्प जो है वो भाग जाएंगे, फालतू बातें भाग जाएगी। उसके लिए बाबा कहता है कि बच्चे जितनी आवश्यकता है उतना ही सुनो, जिससे फायदा है वो ही बोलो, ज्यादा बोलो भी नहीं ज्यादा सुनो भी नहीं। परहेज सिखाता है ना बाबा। तो जिस समय हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमें कम से कम बोलना है, कम से कम सुनना है, जिन बातों से हमारा कनेक्शन नहीं है वो बातें हमें सुननी नहीं है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी सहज ही हमारे ऊपर कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। आज आप देखो तो बाबा सूर्यवंशियों की भी स्थापना करता है, चंद्रवंशियों की भी करता है, तीन धर्म स्थापन करता है, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय। अभी बाबा ने तो देवताओं को और क्षत्रियों को दोनों को भी एक ही जैसा ज्ञान दिया है, किसी को कम नहीं दिया है, जो क्षत्रिय बन गए त्रेता में चले गए। पर कारण क्या है, जो सूर्यवंशी बनने वाली आत्माएं हैं उन्होंने इन कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया। आप देखो हमेशा देवताओं को कहां बताते हैं, विराट रूप देखेंगे ना तो देवताओं को मुख में बताते, तो ये मुख के अंदर जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान हैं, मुख है, इसके ऊपर अगर हमारा जापता है, कंट्रोल है, तो हम सूर्यवंशी में आ सकते। बाबा ने हम बच्चों को बताया है, देखना है तो तुम्हें क्या देखना है, देखना है तो तुम आत्मा को देखो, शरीरों को मत देखो। तो जितनी जितनी हमें हमारी आत्मिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि होती जाती है, उतना उतना हमारा विकारों के ऊपर विजय प्राप्त होता है, सिविलाय बनती जाती। बुरा मत सुनो, कानों के ऊपर कंट्रोल, बुरा मत बोलो, बोलना है तो क्या बोलो, ज्ञान ही बोलो, बोलना है तो तुम्हें आत्म उन्नति की बातें ही बोलो, सुनना है तो आत्म उन्नति की बातें ही सुनो। तो इन कर्म इंद्रियों के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया वो सूर्यवंश में आ गए, इसीलिए विराट रूप में देवताओं को मुख में बताते और क्षत्रियों को कहां बताते, बाजू में। लड़ाई किसके द्वारा करते है, बाजू से करते है ना, बाहों से लड़ाई की जाती है ना, हाथों से, तो इसीलिए उनको वहां बताते हैं। जो अंत तक माया के साथ लड़ते रहते हैं वो चंद्रवंश बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा ये देखना है कि हमें अपने कर्म इंद्रियों का राजा, स्व राज अधिकारी बन करके विश्व राज अधिकारी बनना है। तो हमारी कर्म इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल है या नहीं, इसका ध्यान अगर हम रखते हैं तो जरूर क्या होता है, एक दिन जो पुरुषार्थ करता है उसकी कभी हार नहीं हो सकती, उसकी विजय जरूर होती है। विजय होती है इसीलिए तो विजय माला बनी है, अगर विजय नहीं होवे तो विजय माला कैसे बने। तो ये विजय माला हमारी यादगार है और हमारी यादगार होने के कारण हमारे को विजय माला का मनका बनने के लिए अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करके जल्दी से जल्दी बाबा की जो आशा है बाप समान बनने की वो पूरी करनी है। तो यहाँ जो आप आए हैं खास भट्टी के लिए, आप विशेष अपने तरफ ध्यान देखे, अपने को चेक करके और यहाँ से चेंज करके पीछे जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय दीदी जी ने अपने अनुभव गम्य शिक्षाप्रद मधुर महावाक्यों के मोतियों में यह भी हमें स्मृति में दिलाया कि आपने मम्मा की भी पालना प्राप्त की है। आपको पिता श्री ब्रह्मा बाबा से एक मैनेजर का खिताब भी प्राप्त था। तो आपने देखा आदरणीय दीदी ने हमें लक्ष्य और उद्देश्य देते हुए हमें लीकेज के तीन मार्ग हमारे बंद किए और हमारी स्वैप स्थिति को बढ़ाने के लिए, स्पीडली विजय माला का मणका बनाने के लिए आपने, उसके लिए हमें परिस्थिति, जो रास्ते ही दोनों के अलग अलग हैं, उनका हमें एक सुंदर अनुभव युक्त सारगर्भित महावाक्य उच्चारित किए। हम दीदी को आश्वासन देते हैं कि दीदी इन चार दिन की भट्टी में ही नहीं बल्कि हम अपनी अलौकिक जीवन में इस रॉयल अलबेलेपन को, लीकेज को और आलस्य को जो इतना सुंदर आपने व्याख्यान किया, व्याख्यित किया, उसको हम अपने जीवन में कभी आने, बोलिए, नहीं देंगे। दीदी का हम ऐसे संकल्प के साथ वायदा करते हुए हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं जो इन्होंने हमारी अलौकिक झोली में ऐसे अपनी जीवन के अलौकिक अनुभवों को हमारे जीवन में भरा। हम उसका पूर्ण लाभ लेंगे और अपनी गति को बढ़ाते हुए हम विजय माला का मणका भी बनेंगे। दीदी जी धन्यवाद, दीदी शुक्रिया। दीदी अभी 7 से 7:30 योग चलेगा, आदरणीय दीदी हमें योग कराएंगे और उसके पश्चात मधुरवाणी ग्रुप के द्वारा भ्राता सतीश जी हम सब के स्वागत में एक बहुत सुंदर तपस्या भट्टी का गीत प्रस्तुत करेंगे। मैं रजौरी गार्डन एवं संबंधित सेवा केंद्र में आए हुए भाई बहने कल प्रातः मुरली क्लास के पश्चात कॉन्फ्रेंस हॉल में 8:30 बजे तक शक्ति दीदी से और सभी रजौरी गार्डन से संबंधित टीचर्स बहने मिलेंगी। तो शक्ति दीदी से सभी भाई बहन और टीचर्स बहने कॉन्फ्रेंस हॉल में कल सुबह 8:30 बजे ध्यान से मिलना। ओम शांति। अभी हम योग में बैठते बहनों से भी निवेदन है कि मंच पे आकर योग में अपनी भूमिका निभाएं।